बीबीसी इंडिया बोल 3 अगस्त दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। जिंदगी के लिए संघर्ष करती उन्नाव की रेप पीड़ित और कानून का मजाक बनाने के आरोप में घिरे विधायक, सिस्टम पर उठते सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 7 दिन में जांच और 45 दिन में पूरी हो सुनवाई। लेकिन क्या इससे बहाल होगा सिस्टम पर भरोसा? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में शरीक होंगी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। पाकिस्तान की सेना ने भारत पर कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि मंगलवार को नागरिकों पर किए गए इन हमलों में 2 की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भारत ने इन प्रतिबंधित हथियारों को इस्तेमाल करके जिनेवा संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। भारतीय अधिकारियों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोपों को गलत बताया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्हें राज्य को लेकर किसी संवैधानिक प्रावधान में बदलाव की खबर नहीं है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती केवल सुरक्षा कारणों से की जा रही है, मगर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार खतरे की आशंका के आधार पर यहां कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर खासकर घाटी के हालात पर चिंता जताते हुए अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की निंदा की है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ऐसे हालात पहले कभी नहीं पैदा हुए।
कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नर हो, किसी ने ये एडवाइजरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एडवाइजरी कभी नहीं गई कि टूरिस्ट वापस आए और यात्री यात्रा को कटेल करके कम करके वापस अपने अपने राज्यों में आए।
ये थे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। कई सप्ताह के सरकार विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस समर्थक प्रदर्शनों के कारण हांगकांग में तनाव की स्थिति है। हांगकांग क्षेत्र की पुलिस के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने बंदरगाह के निकट अपनी रैली निकाली है। पुलिस समर्थक रैली की एक आयोजक इनेस टेंग ने कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। हांगकांग में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस का है। अगर पुलिस बल प्रयोग नहीं करती है तो हांगकांग अराजक हो जाएगा। मेरी निजी राय है कि पुलिस का अधिकार है कि वह कानून लागू करे। ये थे पुलिस समर्थक रैली की एक आयोजक इनेस टिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस की राजधानी मॉस्को में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में विपक्षी कार्यकर्ता लियोबोव सोबोल भी हैं। वह विपक्ष के बड़े नेता एलेक्सी नेवलनी के काफी लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीते महीने रैलियां शुरू की थी और उनकी मांग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मई 2017 के बाद से बीता जुलाई महीना अफगानिस्तान में ऐसा रहा है जिसमें सबसे अधिक आम लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन ने कहा कि इस दौरान 1500 लोगों की मौत हुई है और इसकी वजह तालिबान और दूसरे चरमपंथी समूहों के हमलों में बढ़ोतरी है। सूडान में सत्ताधारी जनरलों और मुख्य विपक्षी गठबंधन के बीच नई नागरिक सरकार के गठन के लिए संवैधानिक घोषणा पर सहमति बन गई है। इसकी खबर फैलते ही देश में लोग खुशी जताते हुए सड़कों पर उतर आए। विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि यह अभी पहला कदम है और अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। इंडोनेशिया की आपदा राहत एजेंसी का कहना है कि शुक्रवार को जावा और सुमात्रा द्वीपों पर आए शक्तिशाली भूकंप में कम 4 लोगों की मौत हुई है। 6.9 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सुनामी की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोगों को तटीय इलाकों से हटाया गया था, मगर अब वे अपने घरों को लौट रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। जिंदगी के लिए संघर्ष करती उन्नाव की रेप पीड़ित और कानून का मजाक बनाने के आरोप में घिरे एक विधायक, सिस्टम पर उठते सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, लेकिन क्या इससे बहाल होगा सिस्टम पर भरोसा? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, 1811-7000 और 1800-102-7001। बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। राधिका जी, आपका स्वागत है। स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसे सुनते, पढ़ते या बयान करते वक्त किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये ही 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है? क्या ये ही वो कानून का शासन है जिसका वादा करते हुए सत्ताधीश सत्तानशी हुए हैं? ये वो मामला है जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक सवाल करते हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। इस मामले को लेकर बीते 2 साल से सिस्टम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला ये है कि उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट का रुख किया। इसके बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का सिलसिला। आरोप है कि पीड़ित के परिवार पर कई फर्जी केस लगाए गए, पिता को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया तो मामला चर्चा में आया। इसके बाद पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मामले की जाँच CBI को सौंपी गई, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही हो सकी। और अब बीती 28 जुलाई को पीड़ित एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गई। उनके वकील भी घायल हैं, जबकि 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। परिवार किस कदर डर में है, ये उनकी मां ने BBC संवाददाता दिव्या आर्य से बातचीत में बयान किया।
लड़ाई बहुत है, भारी है, क्या न्याय मिलेगी? हमको तो कुछ भरोसा नहीं है। मेरे घर में कोई नहीं, खाली छोटे छोटे बच्चे हैं, हम हैं। मेरे घर में कोई खर्चा संभालने वाला नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे?
एक बार जब सेंगर की गिरफ्तारी हो गई, कुलदीप सेंगर की, तो कुछ आप लोगों को आराम मिला उसके बाद?
आराम क्या मिला सर, और देखो मेरा पति मर गया, ऊपर चला गया भगवान के ऊपर। वो हम उनके तो बीवी बच्चे लड़के बच्चे दुनिया परिवार मतलब नेता नगरी सब मिल जाएगी, और हमारे पूछो न बच्चे मिल पाएंगे न हम मिल पाएंगे, कोई नहीं मिल पाएगा। हमेशा डर रहता है मैडम, पर हम लोग कहते हैं चलो मार देंगे तो मार देंगे।
ये थी लखनऊ के एक अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करती रेप पीड़ित की माँ। सवाल और भी हैं, हम उन पर राधिका जी के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हेलो हेलो
हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी सर, जी वात्सल जी, नमस्कार सर।
नमस्कार। अपना नाम बताइए।
और राजन गुप्ता सर, मोहनगंज पूरे खुशई प्रतापगढ़ UP।
जी जी राजन जी, क्या कहना है आपका?
सर आपने जो कहा कि क्या ये 21वीं सदी की सदी का भारत है जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने सपना देखा था, अपना बलिदान दिया था, ये सर ये ब्यूरोक्रेट्स और प्लस ये पॉलिटिशियन से मिलकर सर पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं सर। हमारा इतना प्यारा खूबसूरत देश है सर, इतना अच्छा सर, हमारा लोकतंत्र है इतना बड़ा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सर ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सर मिलकर पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं।
जी राजन जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। राधिका जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। ये पूरा मामला एक सिस्टम पर सवाल जैसा खड़ा हो गया है, क्योंकि पीड़ित ने न्याय के लिए हर स्तर पर दरवाजा खटखटाया। वो पहले पुलिस के पास गई, फिर जिला प्रशासन के पास गई, मुख्यमंत्री के पास भी गई, और अब सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जो चीफ जस्टिस तक पहुंची नहीं।
जी,
आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं?
जी वात्सल्य जी, अब अगर आप देखें, जब तक वो मुख्यमंत्री के बंगले के सामने आत्मदाह नहीं किया या अटेम्प्ट नहीं किया, तब तक मुझे लगता है कि उनकी उनकी जो पीड़ा है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था
जी, जब तक उन्होंने वो कोशिश नहीं की,
कोशिश
तब तक किसी
नहीं
ने
की, हाँ, मीडिया तक स्टोरी को उस दौरान ही पकड़ पाई और उसके बाद घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से होने लगे और ये सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर जो मेन अक्यूज्ड हैं, जो
जी इस मामले में अभियुक्त हैं, विधायक भी हैं,
विधायक भी हैं, काफ़ी माने दबंग टाइप के विधायक माने जाते हैं, वो फिर जेल में गए, सीतापुर जेल में। लेकिन जेल से ऐसे लग रहा है कि वो शासन प्रशासन उनकी वो जो करना चाहते थे उनके कमांड में थी वो
जी, बिल्कुल आरोप भी इस तरह के लग रहे हैं और जिस तरह से पुलिस ने सुनवाई नहीं की, जो पीड़ित पक्ष का आरोप है और बार बार बड़े अधिकारी भी उनको माननीय विधायक कह के बुलाते रहे
जी
जी, इसे लेकर लगातार सवाल
फिर
बने
से
रहे।
सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा, उसके बाद ही कुलदीप सेंगर पे कुछ ठोस एक्शन लिया गया, वो भी बीजेपी बहुत झिझक रही थी, जिस पार्टी को अभी वो बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो झिझक रही थी उन्हें निष्कासित करने को, क्योंकि उसी दिन जब घोषणा की कि इनको निलंबित कर रहे हैं पार्टी से, इनको एक्सपेल कर रहे हैं, सुबह सुबह ये उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कुछ उल्टा पलटा बयान दिया, फिर एक स्टेटमेंट वक्तव्य जारी हुआ कि नहीं इन्हें हम एक्सपेल कर दिए पार्टी से, क्योंकि इसमें देखिए सोशल मीडिया का दबाव बहुत ज़बरदस्त था, उन्हीं के बीजेपी के ही जो समर्थक हैं वो बहुत क्रिटिसाइज़ करने लगे योगी आदित्यनाथ का सरकार को। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक उपलब्धि मानी जाती है कि वो कानून व्यवस्था एकदम समान रूप पे यूपी में ला रही है, समाजवादी सरकार के समय तो पूरा सिस्टम चरमरा गया तो
जी, ऐसा आरोप लगता था, लेकिन अब इस सरकार पर भी उसी तरह के आरोप लग रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, तो संभलने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि काफी देर हो चुका और ये बड़ा धब्बा है सरकार के
ऊपर। जी, एक ऐसा मामला बनकर आया जिसने सिस्टम पर, बल्कि हर दरवाजे पर, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, कानून व्यवस्था हो, यहाँ तक की अदालत हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल रह गया। हम लौटेंगे इस बात पर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, एक और श्रोता हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए। जी अपना नाम बताइए, कहाँ से आप बात कर रहे हैं ये बताइए।
राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, राउरकेला उड़ीसा से
है आपका, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी राजेंद्र जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अपनी बात रखिए
जी। मैं सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, काफी उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है और होता है। मेरा एक सुझाव था, सुझाव नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक ऐसे सारे प्रदेशों में जो भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनमें कोई एक स्पेशल सेल का गठन करें जो सू मोटो एक्शन ले रेप केसेस के ऊपर में सिर्फ, और वो कंसर्न जो भी जिस क्षेत्र में भी घटना हुई है उसके एडीएम एसडीएम या जो भी उनके अधिकारी हैं एसएसपी एसपी उनको निर्देश दें कि वो 15 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी करके उनको फाइनल रिपोर्ट दें और ये रिपोर्ट सीधी हाईकोर्ट जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसकी
इस पर संज्ञान ले, जैसा इस मामले में हुआ है। आप चाहते हैं कि ऐसा हर मामले में किया जाए। एक और श्रोता हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो
जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, अपनी बात।
मैं सर गुजरात से बोल रहा हूँ
जी।
मेरा नाम डीके परमार है
जी। परमार साहब अपनी बात रखिए।
45 साल से आपको सुनते हैं सर
जी, स्वागत है।
पहले तो मैं रेप पीड़िता और इनके वकील महेंद्र सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसने बहुत वो काम किया है सर। पीड़िता को जिस तरह काम चला 25 लाख देने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सर, इसी तरह वकील महेंद्र सिंह को भी कुछ देना चाहिए हौसला अफजाई के लिए
जी। परमार साहब आपका सुझाव है कि वकील को भी कुछ मिलना चाहिए। राधिका जी मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, जो आप बात कर रही थी कुलदीप सिंह सेंगर के रसूख की, खासतौर पर बात कर रही थी, वो हर पार्टी में रहे हैं, शुरुआत उनकी हुई कांग्रेस से, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में गए, फिर वो समाजवादी पार्टी में गए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आते हैं
जी।
और उसके बाद 2018 में जब उन पर आरोप लगता है, पार्टी सिर्फ उनको निलंबित करके अलग खड़े हो जाती है और अब तक यानी पिछले गुरुवार 2 दिन पहले तक वो निलंबित ही रहते हैं और पार्टी से उनको निकाले जाने की सूचना अब आती है
जी।
आप राजनीति पर बड़े करीब से निगाह रखती हैं, एक पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है, जो चुनाव में जाती है तो नारा उसका रहता है कि बहुत हुआ नारी परिवार, क्या मजबूरी होती होगी, क्यों नहीं एक्शन हो पाता है?
मजबूरी सीधा सीधा है, इनको लाया गया भाजपा में हृदय नारायण दीक्षित जो वर्तमान सरकार हैं, असेंबली के स्पीकर हैं, वो उसी उन्नाव क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ते रहे और उन्हें जीतना था। और इनके बारे में ये कहा जाता सेंगर जी के उन्होंने 3 बार तो अपना कंस्टिट्यूएंसी बदला और हर 3 पार्टी में रहे, 3 या 4 कंस्टिट्यूएंसीज में रहे और हर बार वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतते रहे
जी।
तो इसका ये सीधा सीधा यही मतलब है कि वो उन्नाव क्षेत्र पे इनका पकड़ काफी कुलदीप सिंह सेंगर का काफी मजबूत है। लोग कहते हैं कि इनका जाल पूरी इलाके में बिछाया गया है क्योंकि जेल में रहते हुए भी जब साक्षी महाराज जी ने अपना लोकसभा चुनाव लड़ा था 2019 में, इन्होंने डायरेक्शन दिया अपने लोगों को कि साक्षी महाराज के पक्ष में काम करो, वोट लाओ। और
तो वो शुक्रिया कहने भी गए तुरंत जून के पहले हफ्ते में,
जेल में गए शुक्रिया। तो कल ही मेरी एक बात हो रही थी एक वरिष्ठ बीजेपी नेता यूपी के, तो वो कह रहे थे कि सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, आजकल जो है विनेबिलिटी ही एक क्राइटेरियन है, कौन जीत सकता है, किसका जनाधार है, कितने वोट पाए पिछले चुनाव में, क्या मार्जिन था, यही देखते हैं। क्योंकि जब सेंगर जी की को शामिल करने की बात हुई थी बीजेपी में तो किसी ने ये मुद्दा रेज किया था कि इनकी जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है,
मतलब दाग है
और हमें दाग है और हमें सोचना चाहिए। लेकिन उस समय जो बीजेपी के ऊपर वाले नेता हैं उन्होंने यही कहा, लेकिन ये हर बार चुनाव जीतते हैं जिस पार्टी में भी हो, इसका मतलब है कि पार्टी लेबल की जरूरत नहीं है, ये अपने बलबूते पे चुनाव जीतते हैं और हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है।
यानी कि लोकतंत्र की जो खूबी है जहां जनता के पास वोट देने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ जा रहा है। हम लौटेंगे इस बात पर। इस बीच एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
सर हेलो। हाँ सर, मैं आशीष जारेड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम गुडली पोस्ट बागोर करौली राजस्थान से। सर
जी आशीष जी अपनी बात रखिए।
सर मैं ये कहना चाह रहा था, आप सभी को नमस्कार सबसे पहले जी, में
नमस्कार आपको भी।
सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मामला है
जी
उन्नाव का, ये इतना चर्चित होने के बाद भी सर न्याय नहीं हो पा रहा है
जी।
तो ऐसे ना जाने कितने केस दबके रह जाते होंगे
जी, ऐसे जाने कितने केस रह जाते हैं, आपकी ये चिंता है। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो, अवधेश कुमार जी, जिला भदोही ग्राम सभा अर्था थाना कोरौना से बोल रहे हैं सर।
बात रखिए जी। अवधेश जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको।
सर ऐसा है ना, कानून व्यवस्था में हर मामले में थाने से हीला हवाली हो रही है सर, यहाँ टाल मटोल होता है। थाने की पुलिस अगर सुधर जाए तो बहुत से घटनाएं रुक सकती है
जी। आपको ऐसा लगता है कि अगर शुरुआत में थाने के स्तर पर ही सही तरीके से कार्रवाई हो जाए तो बहुत सी चीज़ें रुक सकती हैं। राधिका जी इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र चली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे मामले जो हैं उत्तर प्रदेश के बाहर सुने जाएंगे, जांच और सुनवाई की समय सीमा भी तय कर दी है, खासतौर पर हादसे वाला जो मामला है। ये एक उम्मीद जगाने की कोशिश दिखती है, लेकिन जब इतना कुछ कोई गंवा देता है तो ऐसे में जब उम्मीद उसको मिलती है तो क्या मायने होते होंगे उस उम्मीद के,
क्या मायने हैं। ये जो पीड़ित हैं उनके परिवार में एक के बाद एक हादसा हो रहा है और आपने ही इनकी माताजी से भी बात की, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट
जी हमारी बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य वहीं
उन्नाव से रिपोर्टिंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, इस परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। और रही बात पुलिस की, आपके श्रोता ने कहा कि थाने के लेवल से जो है रिफॉर्म शुरू होना चाहिए, मैंने भी इस बात पे बहुत गौर किया है। और हर प्रदेश, हम यूपी को ही अलग अकेले दोषी नहीं मानते हैं, हर प्रदेश में सिस्टम इतना पॉलिटिसाइज्ड हो गया है कि मुख्यमंत्री डायरेक्शंस देते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये सत्य बात है कि हर थाने में जो उन्होंने यादवों को ही भर्ती किया और
जी लगातार ऐसे आरोप उन पर
लगते रहे और योगी जी पे भी यही आरोप लग रहे हैं कि वो अपने ही कौम के लोगों से भर रहे हैं हर थाने। मायावती जब थी तो यही आरोप लग रहा था कि सब जगह जाटव ही इम्पोर्टेंट।
यानी आपका कहना यह है कि प्रशासन का, सरकार का इतना दबाव होता है पुलिस पर कि वो स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर पाएगी।
बिल्कुल नहीं। तो केसेस को बाहर निकाल के ट्रायल करना भी एक, मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में एक बुरा एक बुरा वो नहीं है,
एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो एक सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, हमारे एक श्रोता राजेंद्र ने जो सुझाव दिया, उस सुझाव को आप कैसे देख पा रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की व्यवस्था करे कि कोर्ट ही सुई मोटो इस तरह के जो भी मामले रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसमें एक डर ये भी होता है कि कई बार मामले फर्जी भी होते हैं।
फर्जी होते हैं वात्सल्य जी, लेकिन जो कई सारे मामले रिपोर्ट भी नहीं होते हैं डर के वजह से, ये तो
लेकिन क्या लोकतंत्र में कोर्ट हर मामले पर नजर रखे? फिर ये जो तीन स्तंभ बताए जाते हैं लोकतंत्र के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस क्या रह जाएगी जब हर मामले में न्यायपालिका ही अगर
इस पर तो डिबेट चली रही है कि न्यायपालिका हर बात पे दखल कोट अनकोट का दखल दे रही है, लेकिन मैं दखल नहीं मानती हूँ। जब सिस्टम ही फेल कर रहा है, जो जो आम आदमी है, आम महिला है, उनको फेल कर रहा है, तो वो किसके दरवाजे पे
जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच में एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
सर, मेरी नाम डीसी मंडल है, मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
जी
सर, मेरी विचार ये है
जी,
हर थाना, इस थाना का अंदर में अपराध होएगा, उस थानेदारी की जिम्मेदारी माना जाए, एवं थानेदार को सुप्रीम पावर दिया जाए, वो वेतन भी उसको डबल कर दिया जाए। लेकिन सर तो यही है कि उस थाने का अंदर कोई भी अपराध होएगा तो वो जिम्मेदारी होएगा।
यानी आपका कहना है कि पुलिस को ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो,
अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
मैं कमलेश कुमार वाघेला, गांव नींदतला, तहसील चौड़न, जिला वार्ड में से।
कमलेश जी, जी लगता है संपर्क कट गया है कमलेश जी से, दोबारा आप कोशिश करेंगे बात करने की। एक और श्रोता इस बीच में, उनसे भी लगता है संपर्क कट गया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, लगातार ये पुलिस सुधार की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस का भी अपना एक दायरा होता है। जब प्रशासन और सरकार, जहां राधिका जी दोनों खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि सीधे अगर मुख्यमंत्री के पास से निर्देश आएगा और विधायक खुद जिस मामले में एक्यूज हो, तो पुलिस के हाथ किस हद तक बंधे रहते हैं? पुलिस अधिकारी कितनी स्वतंत्रता ले सकते हैं? किस तरह से वो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनसे पूछताछ कर सकते हैं? क्योंकि ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, जब सीबीआई का दखल हुआ, बावजूद इसके कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 2018 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की 13 जुलाई को, उसके बाद गिरफ्तारी हो पाई 2018 में, जबकि उससे पहले पीड़ित के पिता की मृत्यु हो चुकी थी
जी,
पुलिस कस्टडी में वो थे। तो कितना आसान होता है पुलिस के लिए ऐसे मामलों को?
बिल्कुल आसान नहीं है। आपने पीड़ित की पिता की का जिक्र किया, पीड़ित के पिता और कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल, उनके बीच में कुछ नोकझोंक झगड़ा हो गया था और पुलिस ने पूरी तरह अतुल का पक्ष लिया और पीड़ित के पिता को अरेस्ट किया, उनको कन्विक्ट किया और जेल में भेजा और कस्टोडियल डेथ भी हो गया पुलिस कस्टडी में। तो आप देखिए, यह घटनाक्रम से साबित होता है कि अगर व्यक्ति पावरफुल है, थोड़ा भी विधायक हो या सांसद हो, तो उसके पीछे पूरी प्रशासन की वेट है
जी। तो, और जैसे ये हादसे का मामला है, ये हादसा, ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, इस मामले की अभी जाँच नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो इसे हादसा पहली नजर में मान रहे हैं और वो शायद इसे चाहते हैं कि हादसा ही बता दिया
माना जाए जी। बिल्कुल, तो ये जो है, आप अगर देखें तो अगर आप पावरफुल हो तो ही आप इस ढंग के अपराध करेंगे, चाहे रेप हो या अबडक्शन हो या मर्डर हो या अटेम्प्टेड मर्डर हो, आम आदमी थोड़ी ना करता है। आई मीन, गुस्से में आके अगर या कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए हर एक केस में पावरफुल लोग ही करते हैं ये अपराध, क्योंकि उन्हें मालूम है कि संरक्षण मिलता है उनको और किसी तरह वो बच के निकल जाएंगे। पर ये सेंगर वाला मामला बहुत दूर चल चुका है और इसमें मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा अहम
सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल रहा, और हमें भी सोशल मीडिया पर कई कमेंट मिले हैं, उनमें से कुछ को मैं पढ़ देता हूं। फेसबुक पर जो हमें टिप्पणियां मिली हैं, आश मेहता लिखते हैं कि ये वही सिस्टम है जो पीड़िता के पिता और उसके परिवार वालों को बचा नहीं सका, ये वही सिस्टम है जिसने 2 साल यूं ही गुजार दिए बिना किसी एक्शन के। विलियम विश्वासी का सवाल है कि पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट जज को लिखी गई चिट्ठी जज साहब को नहीं दी गई, ऐसा क्यों हुआ? देवदत्ता का आकलन है कि सब पर कठोर कार्रवाई हो रही है। फहीम शेख लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। आशुतोष राणा कहते हैं कि सिस्टम पर भरोसा करना ही होगा, सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन बिना सिस्टम के जो भी कुछ होगा वो भयावह होगा। राधिका जी, आपने बीबीसी के पाठकों की राय सुनी, इस मामले पर हो रही कार्रवाई को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। एक मामला जो आपने जिक्र किया कि रसूख वाले लोग होते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के मामले भी आते हैं, जैसे कि 16 दिसंबर 2012 का दिल्ली का मामला था जो चलती बस में गैंगरेप हुआ, उसके बाद कानून भी सख्त हुआ, पूरा देश उस समय भी लगभग ऐसा ही उबला था, बल्कि उबाल शायद थोड़ा और ज्यादा था, तब लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्यों फिर स्थितियाँ ऐसी बन गई।
देखिए, आपने वो जो दिल्ली वाला कांड का जिक्र किया, उसको इतनी पब्लिसिटी और इतने अच्छा इट्टी बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ, इसलिए भी कि क्योंकि वो देश की राजधानी में हुआ और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा थे उस समय। उस हिसाब से उन्नाव के लिए जो हुआ था प्रोटेस्ट यहाँ पे इंडिया गेट में, वो बहुत ही छोटा था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो दिल्ली में हुआ, क्योंकि बस के अंदर हुआ, क्योंकि लड़की और उनके फ्रेंड,
मेरा सवाल ये था कि जो उम्मीद बनी थी कि आगे सब ठीक होगा,
ठीक है, हाँ,
वो कैसे टूट जाती है?
वो टूट जाती है क्योंकि ये इस टाइप के अपराध जो हैं वो गाँव छोटे शहरों में तो आम वो है। ये एक रिपोर्टेड है, ये जो उन्नाव वाला, कई सारे कांड तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं शर्म के वजह से कि लड़की बदनाम हो जाएगी, शादी ब्याह नहीं होगा, परिवार का क्या होगा, वो पंगा लेंगे तो उनका क्या होगा,
इसीलिए शायद रिपोर्ट नहीं हो पाते। एक और श्रोता इस बीच में राधिका जी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हाँ जी, मैं लाल मोहम्मद किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
जी लाल मोहम्मद जी, अपनी बात रखिए।
जी, मेरा सोच है कि सर यहाँ कुछ न कुछ जो है सरकार का लचीलापन है।
मतलब आपको लगता है कि सरकार इसमें थोड़ा लचीलापन शिथिलता दिखा रही है? जी
अगर सरकार इसमें अगर कोशिश करे तो जो है पुलिस इस मामले को क्लियर कर सकता है,
क्लियर कर सकती है। जी, एक और श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो
जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी, मैं सुरेश चंद्र वैश्य मानदाता प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। और सबसे पहले हम उस बहादुर बिटिया को, उसकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं कि जिसने इस सारी सिस्टम की पोल खोल करके उसने रख दिया है, उस पर जुल्म पे जुल्म होते गए और बिटिया वो सहती रही, अंत में को भी खत्म करने का प्रयास किया गया। इस कांड की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम।
के लिए बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता इस बीच में हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
नमस्कार सर, मैं पूर्णिया बिहार से मोहम्मद एहराम बोल रहा हूँ। मैं बीबीसी की नियमित श्रोता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि बीबीसी निष्पक्ष और सही जो संदेश देती है, मैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, टाइम होता
है। इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।
सर, आज जिस तरह से बीजेपी की एक पक्ष रहा है, डर जैसा मुद्दा, आज मीडिया हो, पत्रकार हो या पर जनता हो, इसके लगता है कि आज मैं उसके पीछे में बोलूंगा तो पूरे देश मेरे सामने लगेगा कि मैं उसके अगेंस्ट से बोल रहा हूँ। डर की जो माहौल है, आज जो मेरे बहन के साथ ऐसी घटना होती है, आज खुल के पूरा दुनिया देख रही है, उसके लिए उसका कोई इंसाफ नहीं। जब दिल्ली में जब घटना हुई, आज मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, उसे फांसी की सजा दिया गया, मगर एक मेरे विधायक जी, एक जो वरिष्ठ नागरिक है, वो ऐसी घटना करते हैं, उसके सिवा कोई उसको सुनने वाला नहीं।
जी, आपको लगता है कि इस मामले को कोई सुनने वाला नहीं है? आपकी एक पीड़ा है, पीड़ा झलक रही है लगभग सभी श्रोता या पाठक जिन्होंने कमेंट दिए हैं राधिका जी, उनकी पीड़ा ये साफ नजर आती है। मैं चलते चलते बस आपसे संक्षिप्त में एक 30 सेकंड में एक टिप्पणी चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये मामला कोई सबक बनेगा या चीजें जैसी चलती हैं वो चलती रहेगी?
देखिए वात्सल्य जी, कई सारे कांड हुए हैं, हाई प्रोफाइल कांड, आप देखे जाए तो मथुरा वाले कांड से लेके अभी तक ये उन्नाव वाली पीड़ित कांड और दिल्ली का जिक्र किया है। कुछ दिन तक वो होता है शोर शराबा, कानून में भी परिवर्तन आता है, और लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वहाँ पे जो राजनीतिक दबाव है उसको किसी ना किसी तरह हमें उसको ख़त्म करना।
लेकिन जब विनेबिलिटी ये फॉर्मूला रहेगी तो फिर राजनीतिक दबाव को फिर कैसे
नहीं कर पाएंगे, वो ही होगा। तो
क्या सभी पार्टियां जैसे सर्वदलीय बैठक होती है सब मिलकर कोई इस तरह की आम सहमति की, जब तक इस तरह के आरोप हैं खासतौर पर
जी सभी पार्टी को कुलदीप सिंह सेंगर की जरूरत रही कभी ना कभी, तो
वो सारी पार्टियों में घूम के आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। वक्त हमारे पास इतना ही है, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राधिका जी आपका बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। अगले सप्ताह ऐसे ही किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं बीबीसी हिंदी के साथ। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।